ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से आठवां स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 18। बलिरुवाच अहो ब्राह्मण दयाद वाच ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थं प्रति अबुधो यथा। बलिरुवाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्धसम्मतः त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थं प्रत्युबुधो यथा। बलिरुवाच अहो ब्राह्मण दायाद अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्धसत्मतः त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थं प्रत्युबुधो यथा। माता जी
आज
बलि रुवाचा। बलि महाराज ने कहा, अहो आह ब्राह्मण दयादा, ब्राह्मण का पुत्र, वाच वचन ते तुम्हारे वृद्ध सम्मत विद्वानों तथा गुरुजनों को मान्य है। तुम बालः बालक, बालिस्मति पर्याप्त ज्ञान के बिना स्वार्थम अपना हित प्रति के प्रति अबुध ठीक से न जानते हुए यथा मानो। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं। मैं तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तात्पर्य, भगवान अपने में परिपूर्ण हैं, अतएव उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि भगवत गीता 5:29 में कहा गया है, भुक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान इस लोक के तथा स्वर्गलोक के सभी लोकों के स्वामी हैं, भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थ की बलि चढ़ा देते हैं। इसी तरह भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा। ये पंखा बंद कर दो, कोई आवाज आ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलि महाराज पूर्ववर्ती श्लोकों को सुने वामन देव के द्वारा। वामन देव बलि महाराज का भूरी भूरी प्रशंसा किए, और प्रशंसा करने के बाद वे अपना प्रस्ताव उनके समक्ष रखे जिसके लिए वे गए थे। वे गए थे देवताओं का जो राज्य था, उस पूरे राज्य को हासिल करने के लिए, जो कि वे दो पग में ही हासिल कर लिए। दो पग एनफ था हासिल करने के लिए, और तीसरा पग बलि पर कृपा किए भगवान। तो तीसरा पग बलि के सिर पर भगवान रखे, ये भगवान का विशेष कृपा है बलि के ऊपर। इसीलिए भगवान ने बलि महाराज से तीन पग जमीन मांगा। तस्मात ततो महिमिसम ब्रणे हम बरदर्शभात पदानी त्रिणदैतेन्द्र सम्मितानी पदाम मम। कहे तीन पग चाहिए लेकिन मेरे पग से। अब बलि महाराज कुछ कहते उससे पहले ही भगवान ने कह दिया कि नान्यते कामयी राजन बदान्य जगदीश्वरात् नैनम नैन प्राप्नोति वै विद्वान यावद अर्थ प्रतिग्रह। बलि महाराज से भगवान ने कहा कि माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं और बड़े उदार भी हैं, बदान्य हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक जमीन नहीं चाहता हूं। क्यों, इसे ज्यादा क्यों नहीं चाहिए? तो कोट करते हैं, क्या कोट करते हैं, विद्वाना यावद अर्थ प्रतिग्रहा। विद्वानों ने मना किया है, विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति को अपने आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा लेने पर प्रतिग्रह जन्य पाप लग जाता है, तो उसे बचना चाहिए। तो भगवान यहां पर शिक्षा दिए हैं दो चीज। एक चीज, अपने मन से कुछ काम नहीं करना चाहिए, कोई काम करने से पहले ऑथराइज होना जरूरी है। जैसे कोई बिजनेस करे, अपने मनमाना बिजनेस करेगा तो जेल में जाएगा, उसे चाहिए अथॉरिटी से परमिशन लेकर के तब बिजनेस करे। पहले विद्वान लोग ही अथॉरिटी थे, वे ही लॉयर थे, लॉ मेकर भी थे और लॉयर भी थे, विद्वान थे ना, विद्या को जानने वाले वे लोग थे। तो इसलिए भगवान वामन देव यहां पर आचरण प्रस्तुत किए हैं कि हम लोगों को वही काम करना चाहिए जो विद्वानों के द्वारा सम्मत हो, जो विद्वानों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य हो, नहीं तो अपने मनमाना काम करने से जो ऐसा व्यक्ति करता है वो तो पहला नंबर असुर हो जाता है, वो आश्रित प्रवृत्ति है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र का, विद्वानों का बात नहीं मानता है, अपने बुजुर्गों का बात नहीं मानता है, बड़े लोगों का बात नहीं मानता है, मनमाना काम करता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो कहते हैं न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम न सुख को प्राप्त करता है, न पराम गति, न तो जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, बैक होम बैक टू गॉड, उसको भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए सर्वतोभावेन हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का, बड़े वृद्धों का बताया गया बात मानना चाहिए। तो यहां पर वे कूट कर रहे हैं कि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, अब उसके आगे कोई कुछ बोलिए नहीं सकता है, उल्लास चीज है। इसे कहते हैं विद्वान, विद्वान लोग क्या कहते हैं, यावद अर्थ, यावद अर्थ का मतलब प्रयोजनम सिद्धि तावत प्रतिग्रह यस्य सतथा, जितना प्रयोजन हो उतना ही। क कल किसने देखा है। जितना प्रयोजन उतना ले लेना चाहिए, कल का चिंता नहीं करना चाहिए। कल किसी ने देखा नहीं। मनुष्यों में, पशु पक्षियों में अंतर इतना ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक घर है, उसमें चना रख दो, एक चिड़िया को छोड़ दो, वो चिड़िया आएगी, भरपेट चना खाएगी और चली जाएगी। लेकिन दो पैर वाले चिड़िया को रख दो उसमें, तो भरपेट खाएगा भी, दो चार पांच किलो बांध कर ले भाई जाएगा। हम लोगों को चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लो। भगवान व्यवस्था कर दिए हैं कल के लिए भी, काहे चिंता करने का। एक कथानक मुझे याद आ रही है कि एक बार एक महात्मा थे, उन्हें मंदिर निर्माण करना था। मंदिर निर्माण करने के लिए दान लेने के लिए किसी सेठ जी के पास गए थे। जब सेठ के पास मिले, सेठ से उसका खूब प्रशंसा किए कि आप बहुत दानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, खूब जैसे भगवान वामन देव ने बलि महाराज का किया। और उतना कहने के बाद सेठ जी से कहे कि मैं एक मंदिर बना रहा हूं, आपका सहयोग चाहिए। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज आप कोई गलत एड्रेस पर आ गए हो, ये मैं नहीं हूं, बगल वाला, हमारे पास उतना धन नहीं है, वो बगल वाले के पास धन है, तो इसलिए क्षमा करना, मैं आपके मंदिर बनाने में सहयोग नहीं कर सकता हूं, मैं उतना धनी नहीं हूं। तो महात्मा ने कहा सेठ जी मैं देख सकता हूं कि आपके पास तो इतना धन है कि आपका तीन पीढ़ी बैठे बैठे खा सकता है। जब ही सेठ जी ये बात सुने, तुरंत खड़ा होकर के और महात्मा का चरण पकड़ लिए, कहे कि महाराज फिर मेरे चौथे पीढ़ी का क्या होगा। तीन पीढ़ी तो खास, में चौथे पीढ़ी का क्या होगा। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा ने कहा एक तरीका है चौथे पीढ़ी का, जैसे आप धन बैंक में रखते हो तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक वाले तो कम इंटरेस्ट देते हैं। आजकल तो बैंक में स्कैम भी हो जाता है, अभी पीएनबी में हुआ है, सब लोग कौन मोदी जी किए हैं। महात्मा ने कहा कि एक ऐसा बैंक है जहां कोई स्कैम नहीं होता है, और वह जो संचित धन होगा वो तुम्हारे चौथे पीढ़ी के लिए होगा। कहा क्या है। कहा वह है पुण्य काम करना, दान देना। कहा देखो दान चार प्रकार का होता है। एक तमोगुणी दान होता है, एक रजोगुणी, एक सत्गुणी और एक विशुद्ध सत्गुणी। अब पूछा कि इसका मतलब क्या है। कहा तमोगुणी दान उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति विशेष के लिए किया गया हो, एक व्यक्ति विशेष के लिए जो समा काम हम करते हैं वह तमोगुणी सेवा है, चैरिटी है, दान है, जो भी है। एक से ज्यादा लोगों के लिए जो करते हैं, समाज के लिए करते हैं, वह रजोगुणी दान कहलाता है। देवी देवताओं के प्रसन्नता के लिए जो काम करते हैं वो सतगुणी दान कहलाता है, और भगवान के प्रसन्नता के लिए जो दान करते हैं या जो सेवा करते हैं वो विशुद्ध सतगुणी दान कहलाता है। अब इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। जो भगवान के लिए कुछ करता है, भगवान अनंत हैं, तो उसका रिटर्न कितना मिलता है, अनंत मिलता है। तो चौथा पीढ़ी का तो बात कर रहा है, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक का व्यवस्था हो जाएगा। देवताओं के लिए जो करता है, सतगुणी है, तो उसको 100% रिटर्न मिलता है। जो समाज के लिए करता है 50% मिलता है, और ये व्यक्ति विशेष के लिए करता है उसे 10% मिलता है। इतना कहकर महात्मा चल दिया। वह सोच रहा था, विश्वास तो महात्मा के वर्ड में था नहीं, लेकिन उसको चिंता था अपने चौथे पीढ़ी की। कहा चलो कुछ तो करते हैं। तो वह चुना सबसे कण्डम नीचे वाला, तमोगुणी दान, व्यक्ति विशेष को कुछ देना। चलो 10% में मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, पूरा तो नहीं चला जाएगा ना। चलो तो देना शुरू किया। पहले दिन दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन बेचारा खड़ा था दरवाजे पर, कोई आ ही नहीं रहा था। बहुत देर हो गया तो देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है जो बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। देखिए, जो सतगुणी दान देते हैं, जो भगवान के लिए दान देते हैं, वो तो कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। अन्याभिलाषा शून्य, जो देवी देवताओं के लिए करते हैं, वो उनके प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो रजोगुणी दान करते हैं, वो पूरे परिवार का सुख चाहते हैं। और जो तमोगुणी दान देता है व्यक्ति, उसमें अहंकार होता है, उसे नेम फेम ग्लोरी चाहिए, देगा इतना लेकिन चाहेगा इतना। तो इसमें बहुत अहंकार भी था कि मैं दान देता हूं। तो उस गरीब व्यक्ति को बोला, अरे तू जल्दी आओ जल्दी आओ, तुझे मालूम नहीं है मैं दान देता हूं, तो इतना देर लगा दिया, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वो आया, कहा बताइए क्या बात है। करे क्या बात है, तुम्हें मालूम अभी तक नहीं चला मैं इतना एडवर्टाइज करा दिया, मैं दान दे रहा हूं, तुम बड़ा लेट आया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि महाशय, मैं जानता हूं कि, मैं सुना हूं कि आप दान देते हो। तो कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कहा मैं जा रहा हूं अपने पत्नी से पूछ कर आ रहा हूं क्या चाहिए। कहा महा तो पागल है, मैं यहां देने के लिए तैयार हूं, तो पत्नी से पूछने जा रहा है। वह गया, बाद में आया और हां जोकर कहा कि महात्मा आप तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी पत्नी कहती है कि आज भर के लिए है, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। और उतना कहकर वह चलते बना। अब इनके चेहरे पर बहुत जोर का झापड़ उसने मार दिया सर से। उनका सोया हुआ जो बुद्धि था वो जग गया। कहे बाप रे बाप, इसको दो एक दिन के लिए है, कल के लिए चिंता नहीं है, हमारे पास तीन पीढ़ी का है और हम चौथे पीढ़ी का चिंता कर रहे हैं। उसे बैराग हो गया, घर द्वार सब छोड़कर भजन करने चला गया। साधु का संग हुआ था ना। तो इसलिए हमें वही करना चाहिए जो विद्वान कहते हैं, जो शास्त्र कहता है, जो भगवान कहते हैं। ना कहते ईशावासीदम सर्वम यत्किंचित्याम तेन त्यक्तेन मुनिता माग्ध कश्चन धनम। माग्ध, लालच मत करो दूसरे के लिए, लालच बुरी बलाए है। तो वही कहते हैं, वही वही मतलब सर्टेनली, इसमें कोई दो राय नहीं है। माने ऐसा नहीं कि मैं तुमको इंप्रेस करने के लिए कह रहा हूं कि हमको तीन बगीचे दें। नैनम प्राप्नोति, वही निश्चय ही मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल जो मैं कहा हूं तीन पग उतना ही चाहिए, न काम है अब सब कुछ देने में, क्योंकि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को उतना ही चाय लेना चाहिए जितना से उसका भरण पोषण हो सके, ज्यादा नहीं। अब यह बात सुनने के बाद देखिए बलि महाराज को क्या हुआ। बलि महाराज को बहुत गुस्सा आ गया, अपने को इंसल्टेड फील किए बलि महाराज। और बामन भगवान को उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया। केवल तीन पग जमीन मांगे थे और उसके लिए वे इंसल्ट फील किए। एक साक्षात ऐसे ही घटना है, प्रभुपाद जी इसी को कोट किए हैं। एक बार प्रभुपाद जी आकाश गंगा में जब रहते थे बॉम्बे, तो बर्ली सी फेस पर मॉर्निंग वॉक के लिए आया करते थे, तो उनके साथ में विदेश से आए हुए थे, बहुत भक्त विदेशी भक्तों को लेकर के आए हुए थे। जय श्री गौनिताय की जय, राधारास बिहार स्थान सम्मान की जय। विदेशी भक्तों को लेकर के आए हुए थे, तो इंडियन लोग उन दिनों, आज भी ऐसा कम हो गया, लेकिन उन दिनों विदेशी लोग इंडियन लोगों को खूब सम्मान करते थे। इस चमड़ा को वो समझते थे कि इस चमड़ा में शांति छिपा हुआ है, ये चमड़ा वाले वेद शास्त्र पुराण जानते हैं, भारत के हैं, ऐसे सम्मान करते थे। और भारतीय लोग उजला चमड़ा के, वो पैसा वाला ये है, उजला चमड़ा मतलब पैसा वाला है। आज भी देखो एयरपोर्ट पर, चाहे जुहू भी चले जाओ, कोई विदेशी आ जाए, भले कंगाल विदेश का हो, उजला चमड़ा वाला होना चाहिए ना। गरीब कहते हैं $1, $1, $1, वो घूमते रहते हैं, वो समझते हैं कि $1 मतलब 60 रुपया हो जाएगा, $1 मांगते रहते हैं। खैर, विदेशियों के साथ में रहना अपने को कुछ मायने रखता था, और किसी घर में विदेशी नौकर हो तो कहना ही क्या है, उन दिनों का बात है। तो प्रभुपाद जी के साथ में बहुत विदेशी लोग थे, एक दो नहीं बहुत लोग थे। तो जितने इंडियन रिच लोग थे, वो सब लोग प्रभुपाद जी के साथ में मॉर्निंग वॉक करने आते थे, और प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर आते थे, और कुछ लोग साथ में आते थे और प्रभुपाद जी सुबह में दर्शन देते थे, बात करते थे, शाम को भी सुबह भी। तो एक दिन एक नेवाटिया जी हैं, रामेश्वर दास नेवाटिया, कलकत्ता के हैं, लेकिन वो आए थे, और रामकृष्ण बजाज उनके रिश्तेदार हैं, और वैसे ही बीके बिरला भी। तो ये लोग मॉर्निंग वॉक के, बिरला जी भी कलकत्ता से आए थे, तो मॉर्निंग वॉक के लिए सब लोग गए थे। तो शाम को प्लानिंग हुआ कि चलते हैं स्वामी जी से मिलने के लिए। तो रामकृष्ण बजाज बिरला जी से कहे कि हम लोग चलते हैं, स्वामी जी अमेरिका से आए हैं, बड़ा अच्छा प्रचार कर करके चलते हैं। बिरला जी कहते हैं, अरे हम स्वामी जी के पास नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे तो स्वामी जी लोग का पैसा मांगते हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे। वो नहीं आए, अन्य लोग आए। तो नेवाटिया जी यह बात प्रभुपाद जी से कह दिए, यह बात प्रभुपाद जी से कह दिए। तो प्रभुपाद जी यही श्लोक कोट किए, प्रभुपाद के देखिए ये बिरला लोग कैसे हैं, बहुत धनी लोग हैं, ये डर रहे हैं, समझते हैं कि स्वामी जी के पास जाएंगे तो स्वामी जी पैसा मांगेंगे। और एक बलि महाराज ऐसे बिरला थे, उन्हें 3 पग जमीन माना, उसे गुस्सा आ गया, कहा कि आजकल के बिरला लोग यदि ब्लैंक चेक दे देंगे और उसमें 3 रुपया लिख दूंगा तो कहेंगे स्वामी जी बड़े संतोषी हैं, स्वामी जी बड़े संतोषी हैं। और वो बिरला देखो बलि महाराज 3 पग जमीन मांगे तो गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर क्या बोलते हैं, हिंदी वाला श्लोक दिखाओ भाई, हिंदी वाला श्लोक दिखा दो, अंग्रेजी वाला में तोड़ना पड़ता है। बलि महाराज कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद, यानी तुम ब्राह्मण नहीं है, केवल जात का ब्राह्मण है, दयाद, ब्राह्मण दयाद, जादव दयाद, दयाद मतलब जाति, तुम ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का, या ब्राह्मणेभ्यो दायम वा संकृतयाम ददाती इति, या ब्राह्मण के द्वारा तुम जन्म लिए हो, यानी तुम्हारे बाप मां ब्राह्मण है, बस ब्राह्मण तो तुम में नहीं है, खानदान में ब्राह्मण हो या बाप माँ ब्राह्मण से जन्मे हो, ब्राह्मण सूत हो। तीसरा, इसका डायरेक्ट मीनिंग भी है और इनडायरेक्ट मीनिंग भी है। तो पहले मैं डायरेक्ट मीनिंग बतलाता हूं, उसके बाद में इनडायरेक्ट मीनिंग बताऊंगा। कहते तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ब्राह्मण के जाति वाले हो, वाचस्ते वृद्ध सम्मताम। चूंकि ब्राह्मण के बच्चे हो तो तुम्हें संस्कार तो हुआ ही है, गीता भागवत भी पढ़ लिए हो, क्योंकि ब्राह्मण लोग स्वाभाविक है कि सबके गुरु होते हैं, तो तुम्हें ज्ञान तो प्राप्त है। और कैसा ज्ञान प्राप्त है? कहते हैं वृद्ध सम्मताम। वृद्ध, वृद्ध मतलब बुढ़ा नहीं, ज्ञान में वृद्ध, एज में वृद्ध नहीं, ज्ञान में वृद्ध, ज्ञान से तुम परिपक्व हो। लेकिन इतना ज्ञान रहने के बाद भी तुम बालो, आखिर हो तो बालक ही ना, और बालिस्मति, बालक हो इसलिए तुम्हारा ज्ञान तो बड़ा है लेकिन जो इच्छा है वो बहुत छोटा है। बालकपन में बालकों की इच्छा होती है आजकल क्रिकेट बॉल का, थोड़ा जवान होगा तो जवानी की इच्छा होगी, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, बाल्यकाल में बच्चे लोग क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तो उन्हें क्रीड़ा की वस्तुएं चाहिए, तरुणा तरुणा अवस्था तरुणी सत्ता। एनीवे, तो कहते हैं बाल तुम बालो बालिस्मति, चूंकि बालक हो, तुम्हारी मति भी बुद्धि भी बालक के समान है, ज्ञान है लेकिन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचा है। अब बुद्धि के कई एक भेद होते हैं, जैसे पहला जो है मैं कई को बताया हूं, स्मृति पहला भेद है, पंडा प्रज्ञा ये सब अलग अलग विभाग हैं, उनका अलग अलग काम है। मति मन जो ज्ञान है एक सब्सटेंस है और वह होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो बुद्धि कहलाता है। बहुत लोगों के पास ज्ञान है लेकिन समय पर काम नहीं कर, तुम्हारा बुद्धि मारी गई थी क्या? ज्ञान तो है बेचारे के पास लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ, उसे मति कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। फिर बालिस मति, तुम्हारी मति जो कैसी है बालक के समान है। इसीलिए स्वार्थम प्रति अबुधो यथा, जैसे कि जो बालक होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि उनका भलाई किसमें है, अबुध मतलब अज्ञानी होते हैं अपने स्वार्थ के प्रति। तो एक तो मोटा मोटी यह अर्थ है। दूसरा अर्थ, इनडायरेक्ट अर्थ, भगवान बलि महाराज के मुख से ये बात कहला रहे हैं। कहते हैं ओहो ब्राह्मण दयाद, हे ब्राह्मण के देवता। दयाद का अर्थ होता है प्रकट होना, देना, जो ब्राह्मणों को देते हो अपने को, या ब्राह्मणों ने जो सर्वस्व दे दिया हो। तो ब्राह्मण दयाद का मतलब ब्राह्मणों के देवता, और भगवान ब्राह्मणों के देवता है। नमो ब्राह्मण देवाय। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जन्मना जायतो शूद्र संस्कार द्विजो भवेत वेद पढ़ेत भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण दयाद, तुम भगवान को जानने वाले हो। और जो भगवान को जानने वाला होता है उसका सिम्टम यहां पर बताया गया है। जो भगवान को जानने वाला होता है वो अच्छा प्रवचन करता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वाचस्ते वृद्ध सम्मताम, इस कान के नौजवान भगत भी ऐसा ऐसा प्रवचन करते हैं कि बुढ़िल हरी बाप रे कहां से सीख कर गया है? है ये भक्तों का गुण है जी, जो अपना जीवन भगवान को दे दिए हैं वे लोग कहते हैं वाचस्ते, मतलब तुम्हारा जो वचन है गुण है कैसा है, वृद्ध सम्मत, हा लगता है तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुढ़े, बहुत जानकार हो, पहुंचे हुए फकीर हो। सही में ये भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान को जानने वाले होते हैं। तुम बालो, भक्त लोग बालक बनकर ही रहना चाहते हैं, भक्त लोग जवान नहीं बनना चाहते हैं। जवान होने पर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, बालक होते हुए कोई टेंशन नहीं, बाप माँ है ना। मैं तो एक बार कहा हूं कि संसार में सुखी कौन है, कौन सुखी है? जो बालक है, जो भूतकाल को सोचता है वो दुखी है, जो भविष्य को सोचता है वो दुखी है, चिंतित है, लेकिन जो वर्तमान में जीना जानता है वह सुखी है। और वर्तमान में कौन जीता है? राम रंजन जी, बालक। बालक वर्तमान में जीते हैं, वो समुद्र किनारे चले गए, वो बालू का घर बनाएंगे, उसी में उनको मजा आ रहा है। बाप माँ को कहते चलो पढ़ो, इसकी चलो स्कूल जाओ, उन्हें पता नहीं है स्वार्थ प्रति अभ्युदयो, हमारा किसमें कल्याण हो उन्हें मालूम नहीं है। तो जो भक्त लोग हैं वो वर्तमान में जीना जानते हैं, अभी जप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे राम और जो वर्तमान में जीना जानता है वही भविष्य में जी सकता है। जो वर्तमान में आनंद से जी सकता है वही भविष्य में आनंद से जिएगा, लेकिन जो वर्तमान में नहीं जी रहा है आनंद से वो मरते दम तक आनंद से नहीं जिएगा। दूसरे के लिए कर रहा है ना, खूब करेगा, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, अंत में कोई सहारा नहीं मिलेगा। जिसके लिए किया वो डंडा मार के घर से बाहर भगा देंगे उसको, जैसे अवंती ब्राह्मणों को किए। तो भक्त लोग बालक बनकर रहना चाहते हैं। तुम बालो बालिस्मती, यहां पर बाल शब्द कहने का मतलब डिपेंडेंट हुआ। बालक लोग अपने बाप मां पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। भक्त लोग अहर्निश भगवान पर डिपेंडेंट रहते हैं। अरे आप ही लोग यहां पर आश्रम ज्वाइन कर लिए हो, गौरा है इधर, कहां है? हां, ये जाता है मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, है ना। इसको शायद भाव मालूम होगा, इसमें से कितने ब्रह्मचारी को भाव मालूम होगा आलू का टमाटर का, बताओ तो। विष्णु टमाटर कैसे भाव है मालूम है? लेकिन 9 बजे गरम गरम प्रसाद मिल जाएगा। कैसे पर है मालूम है टमाटर का भाव? तो बालस्मती बालकपना है, जानना चाहिए बलि महाराज के अनुसार। नहीं क्या जरूरत है, भगवान से व्यवस्था, सोसाइटी से व्यवस्था करिए रही है तो आनंद है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं, टमाटर का भाव क्या है, प्याज का क्या, प्याज जब खाते भी नहीं है। और कितने लोग टेंशन में रहते हैं, भाव बढ़ते जा रहा है डेली, गवर्नमेंट गाली देते हैं, अपने तो करना नहीं है। ये है बालस्मती। क्यों? कि बाप माँ हमारे हैं। बालक क्यों खुश रहते हैं? कि बाप माँ हैं। तो ब्राह्मण दयाद, जो ब्रह्म को जान गया है, जो ब्रह्म को समर्पण कर चुका है अपने को, जिसके देवता भगवान हैं,
वह सही में बालक है। इसलिए हमेशा बालक बनकर रहना चाहिए हम लोगों को। बालक बन के रहोगे भगवान की दोनों हाथ से कृपा, अनंत हाथ से कृपा भगवान की बनी रहेगी। जब ही चलाक बनोगे, ज्ञानी बनोगे, तो माया देवी पकड़ लेगी। और बालक बनने का सबसे सरल तरीका है भक्ति करो, ज्ञान के पीछे मत पड़ो, भक्ति करो। और जो भक्ति करता है तो ज्ञान के पीछे पीछे आता है, तो बाय प्रोडक्ट है ज्ञान। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अद अहेतुकम। जो भगवान वासुदेव का भजन करने लगता है, तो भगवान वासुदेव का भजन करने से वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, हम लोगों को नित्य निरंतर भगवान के सेवा में लगना चाहिए और कुछ नहीं। आगे पीछे मत दो, केवल सेवा करो, जो भी सेवा दी गई सेवा करे। भक्ति योग प्रयोजित जनयति आंसु, जनयति मतलब जन्म लेता है, आंसु मतलब तुरंत। क्या जनयति आंसु वैराग्यम, वैराग उत्पन्न होता है। वैराग का अर्थ होता है विगत राग इति वैराग्य और विशेष राग इति वैराग। संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, यही कहलाता है वैराग्य। तो भक्ति करने से वैराग उत्पन्न होता है। जनत आंसु वैराग्यम और क्या ज्ञानम च अद अहेतुकम, अहेतुकी ज्ञान, निष्काम भाव से भजन करने की ज्ञान प्राप्त होता है, और वह होता है भगवान वासुदेव का भक्ति करने से। भक्ति शब्द से मुझे याद आ गया, एक बार पिछले क्लास में मैं शायद बोल दिया था कि मंगला आरती आना या सुबह उठना ये भक्ति नहीं है। तो कोई भक्त राम रूप प्रभु ही हमसे पूछे, प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल दिया। मैं कहा भक्ति नहीं है तो बोल दिया। कहा नहीं, भक्त लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। मैं कहा भक्ति नहीं है। अरे भक्ति तो केवल 9 प्रकार का बताया गया है प्रहलाद जी, 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, यही भक्ति है। भक्ति 9 लक्षण और सब जो है उसके अंग हैं। 64 अंग भक्ति रसामृत में वर्णन किया गया है, अंग है, उपांग है इत्यादि। तो मंगला आरती आना अंग है, सुबह सुबह उठ जाना और स्नान इत्यादि करना अंग है, ये तिलक करना ये अंग है। अंग मतलब सहायक, जैसे हाथ है, हाथ शरीर का अंग है, हाथ शरीर नहीं है, हाथ शरीर का सहायक है। तो वैसे ही ये सब हेल्प करते हैं भक्ति में। लेकिन डायरेक्ट भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तन, श्रवण कीर्तन भक्ति है। ये सुन रहे हैं ये भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, ये डायरेक्ट भक्ति है और सब उसके अंग है। ये मंगल आरती नहीं आओगे तो कहां श्रवण कीर्तन करोगे, क्लास में नहीं आओगे तो श्रवण कीर्तन कहां करोगे। वो हेल्प और टूल्स हैं, दे आर द टूल्स टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। मैं देखता हूं कभी कभी भक्त लोग मंगल आरती में सुनते नहीं है। जैसे मैं आज ही देख रहा था, ये गौरा गा रहा था बेचारा, बड़ा अच्छा से गा रहा था प्रभुपाद जी का टून। कैसे फिर से गाओ गौरव, गाओ गाओ जल्दी गाओ गाओ। मैं एक श्लोक देख रहा हूं, हाँ 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 वही गा लो। तो ये गा रहा था, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भक्त लोग सुन रहे थे, अपना शॉर्टकट मार रहे थे, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। कैसे दूसरा कहते हैं, मुझे गाता नहीं जानता हूं, कैसे गाते हैं दूसरा तुम। हाँ एक लाइन में खत्म करते हैं। तो एक कुछ गा रहा था और लोग कुछ जा रहे थे, इसका मतलब सुन नहीं रहे हैं। उतना ही नहीं, जब कभी कभी बीच में भक्त लोग ऐसे प्रभुपाद का प्रणाम नमो विष्णु पदार्थ में प्रभुपाद, ये पता नहीं भाव कहां से आ जाता है। अरे हमारा प्रोसेस है सुनना, जब कोई गा रहा है रिस्पेक्ट करो, सुनो, बीच में बोलो मत। श्री कृष्ण चैतन्य गा रहे हैं चैतन्य नित्यानंद हरे हरे, व्हाट इज नॉनसेंस, ये कहां से आ गया, प्रभुपाद कहां सिखाए सब। भागवत महापुराण में, भागवत महात्म में बताया गया है वक्ता और श्रोता के गुण। यहां कहा गया है श्रोताथो निरूप्यते श्रीमद विष्णु कथाश्रय प्रवरा अवराश्च श्रोतारोद विधामता। दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक अवर और एक प्रवर। अवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, नीचे, और प्रवर मतलब श्रेष्ठ। अब अवर कौन है और प्रवर कौन है, उसका बंग प्रवराश्चातको हंस। प्रवर चार प्रकार के श्रोता होते हैं, एक कहलाते हैं चातक। चात पक्षी होती है जो स्वाति नक्षत्र के बुंद के लिए प्रतीक्षा करती है, समुद्र में बहुत पानी है वो पानी नहीं पिएगा, तालाब का पानी नहीं पिएगा, नदी का पानी नहीं पिएगा, चातक। दूसरा हंस, उसके बाद मीन, मीन मतलब मछली, मछली का पलक नहीं होता है, तो जो अपलक दृष्टि से भगवान का कथा सुनता हो, आंख बंद करके नहीं मतलब सोते हुए नहीं, अपलक दृष्टि से या भगवान का भजन करता है, वह कहलाता है मीन। मीनादय तथा, और एक है सुख, सुख मतलब तोता। तो चार प्रकार के ये प्रवर होते हैं, और जो अवर होते हैं वो कहते हैं ब्रिक, भुरुंड। ब्रिक वे कहलाते हैं, ब्रिक मतलब भेड़िया, ये भी श्रोता हैं, भागवत की कथा के श्रोता हैं, कीर्तन के श्रोता हैं, लेकिन भेड़िया प्रकार के हैं। कौन, कोई बांसुरी बजा रहा है, हरिण बड़ा ध्यान से बांसुरी सुन रहा है, और भेड़िया आएगा वहां पर आवाज करेगा, कभी कभी कथा हो रहा है बीच में हरि बोल बोल बोलना शुरू करते हैं, ये भेड़िया प्रकार के श्रोता हैं। वहीं कीर्तन हो रहा है हरि हरि गौरांग, ये भेड़िया प्रकार के लोग हैं, या उसमें नित्यानंद। प्रभुपाद जी कभी न कहे और न किए, प्रभुपाद जी का टेप सुनो कहीं पर। हमारे सोसाइटी में एक सभ्यता बनती जा रही है, मान लो कोई भक्त बोल भी दिया तो बस अब वो परंपरा बनती जा रही है, लेकिन भागवत कहता है कि वे लोग कैसे हैं, अवरा ब्रिक ये भेड़िए प्रकार के हैं, और भुरुंड, भुरुंड एक हिमालयन पक्षी होती है, वो मिमिक्री करते हैं, जैसा आप बोलोगे ना ठीक वैसा ही आवाज निकालेंगे, उसी भाव से बोलेंगे, अपना जीवन में नहीं उतारेंगे केवल मिमिक्री करेंगे। उसके बाद ब्रिस मतलब बैल, बैल होते हैं क्या, वो खली और अंगूर साथ में मिला दे दो उन्हें चलता है, चाहे वो काली जी कथा सुनना वहां पहुंच जाएंगे, दुर्गा जी का सुनना वहां पहुंच जाएंगे, रामायण का सुनना वहां, कृष्ण का सुनना, सब सुनने में चले जाएंगे। तो बैल प्रकार के श्रोता होते हैं, बैल को चाहे गुड़ दो मीठा जो होता है, खली खट्टा होता है, तीखा होता है, दोनों मिलाकर तो पता नहीं चलता है। और चौथे लोग होते हैं वो कहलाते हैं उष्ण, उष्ण मतलब ऊंट। ऊंट लोग क्या करते हैं, बगल में पका हुआ आम का पेड़ है वो नहीं खाएंगे, बगल में झाड़ी है तो झाड़ी खाएंगे है? तो वैसे ही हरी कथा वहां हो रही वहां नहीं सुनेंगे, वो न्यूज पेपर वहां रेडियो चल रहा है ना, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन हारा, कौन जीता, वो सुनने चले जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। तो ये चार प्रकार के श्रोता भागवतम में वर्णन किया गया है, इसलिए मैं प्रमाण दे दिया। हाँ जी, तो बात हो रहा था कि भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, भगवान का स्मरण करना, ये भक्ति है। ये नवधा भक्ति जो है वही प्रहलाद जी आचार्य हैं, महाजन हैं, उन्होंने कहा है। और इसी बात को श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में वर्णित किए हैं कि भक्ति है और भक्ति के अलग अलग अंग हैं, उपांग हैं इत्यादि। तो कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ से आए, भक्ति का बात हो रहा था। तो जो भक्ति करना शुरू कर देता है भगवान वासुदेव का, उसे अपने आप ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं सर्वतो भावेन भगवान पर प्रपन्न रहते हैं, भगवान पर निर्भर रहते हैं। इसलिए स्वार्थम प्रति अबुधो यथा, उनको बाहरी स्वार्थ का कोई चिंता नहीं होता है। अबुधो, कैसे उनका भरण पोषण होगा उन्हें कोई केयर नहीं होता है, कोई चिंता नहीं। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालवान, निशरणागत भाव से भगवान का सेवा करते हैं, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी कृष्ण रक्षा की है, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, कौन साथ में था, क्या लेकर गए थे, कृष्ण रक्षा की। तो स्वार्थम, स्वार्थ का दो अर्थ होता है, सु अर्थ मतलब जीवन का असली लक्ष्य, प्रतिबुधो एक शब्द हो गया और प्रति अबुधो दूसरा शब्द हो गया। प्रतिबुधो मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है उसी को वे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। कौन लोग, जो भगवान के भक्त हैं। तो ब्राह्मण दयाद का मतलब जो भगवान का भक्त है, जिनके देवता भगवान हैं वे ब्राह्मण दयाद हैं। तो उन लोग भगवान पर स्वागत हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, इसीलिए संसार और सांसारिक वस्तुओं के पीछे वे लोग नहीं दौड़ते हैं। बल्कि जो जीवन के लक्ष्य को न जानते हैं वो लोग मूर्ख हैं। तो भगवान बोल रहे हैं और एक एक बात सही कह रहे हैं। कहते हैं वाचस्ते वृद्ध सम्मतहा, तुम ऐसा बोल रहे हो कि मानो सबसे बूढ़े हो। हमारे यहां बिहार में पुरनिया के समान बोल रहे हैं, पुरनिया मतलब पूर्व, बहुत वयोवृद्ध के समान बोल रहे हैं, पुरनिया के समान बोल रहे हैं। तो भगवान सबसे वयोवृद्ध हैं, सबके बापों के बाप हैं। अहमेवाग्रह समीवाग्रह, मुझसे पहले कोई नहीं हुआ था, मैं सबके आगे हूं। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, पवित्रम ओमकारम रीक साम यजुरीयोच। भगवान का पिता अहम अस्य जगतः, इस जगत का मैं बाप हूं। हम लोगों के बाप हैं, उनके 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 बाप हैं, लेकिन अंतिम बाप जो है वो कौन है, भगवान। जन्मादस्य तन्न आदितरतः चार्थी सविज्ञ स्वराज, ये भगवान का जन्मादस आदि इतरतः, इतरतः मतलब निकलना, जो सब कुछ उनसे निकला हुआ है। तो सबसे वृद्ध वो हैं और वही हैं वामन देव। तो वृद्ध सम्मतः, जो तो बात कह रहे हो ऐसे बात कर पुरनिया के समान, जो बुढ़े लोग बात करते हैं, वृद्ध सम्मत है। भगवान ब्राह्मण के रूप धारण करके आए, बामन का रूप धारण करके आए हैं, भगवान अपना रूप नहीं धारण किए, तो बात सही कह रहे हैं। वाचस्ते वृद्ध सम्मता, वृद्ध सम्मता विद्वानों का जो मान्य है, जिसे सम्मता, जिसे विद्वान लोग स्वीकार करते हैं, वह बात कह रहे हो, बात सही है। भगवान सबसे बड़े विद्वान हैं, सब कुछ के जानने वाले हैं। भगवान तो वर्तमान को भी जानते हैं, भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। वेदाहम संथितानि वर्तमानानि च अर्जुन। वेदाहम संथितानि एज इट इज यथावत मैं जानता हूं, सब कुछ भगवान वर्तमानानि च, वर्तमान को जानता हूं, भूत को भविष्य को सब कुछ जानता हूं। वे भगवान वामन देव के रूप में, ब्राह्मण के रूप में बात कह रहे हैं। अब बलि महाराज दो श्लोक और कहे हैं, उसके बाद चुप हो गए हैं। कहते हैं माम बाचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वरम, तुम्हें मालूम नहीं है? पूरा श्लोक, नेक्स्ट श्लोक, लोकानाम एकम ईश्वरम, मैं पूरे संसार का एकमात्र ईश्वर हूं, और तुम अपने वचन के द्वारा माम बाचो भी समाराध्य, अपने वचन के द्वारा मेरा आराधना किया है। वहां घंटी डुला करके आरती नहीं किए थे, उनका प्रशंसा किए थे। माम बाचो भी समाराध्य, तू मेरा आराधना किया है अपने वचन के द्वारा, और मैं हूं कौन? लोकानाम एक ईश्वरम, मैं पूरे जगत का एकमात्र एक छत्र सम्राट हूं, और हमारे पास आकर मुझे इंसल्ट कर रहा है, उसमें लज्जा नहीं लग रही है? तीन पग जमीन मांग रहा है, पदत्रणा ब्रणेति, पूरे विश्व का मैं मां लोकानाम लोक लोकांतरों का मैं मालिक हूं, और तू मांग क्या रहा है? पदत्रण ब्रणेति, चल तीन पग मार रहे या अबुद्धि मान, तुम महामूर्ख हो, तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है। अरे और नहीं तो कम से कम मुझे मेरे विषय में सोचता कि पूरे विश्व का राजा हूं, कितना नाम बदनाम मेरा हो जाएगा। महेंद्र जी समझ रहे हैं ना? बलि महाराज इंसल्ट फील कर रहे हैं तीन पग जमीन मांगने पर, करे तू मूर्ख है। अरे और कुछ नहीं, तुम नहीं कुछ मांगता तो मैं तुमको अपने मन से देता। कभी लोग कहते हैं नहीं आपको जो अच्छा है आप ही दे दीजिए, कहते तुम मांगा क्यों, मुंह क्यों खोला? अरे मुंह भी खोला तो तीन पग जमीन मांगा। अरे यदि गुंगा चुपचाप रहता, नहीं बोलता, तो भी मैं तुमको दीपम दासुसम, कम से कम एक दीप तुमको देता। मांग कर तो गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए मैं फंड रेजिंग में कहता हूं सेमिनार में कि मांगो मत, मांगना मूर्खता है, मांगो मत। इनकरेज करो लोगों को देने के लिए, इनकरेज करो। आई नीड, आई नो माई नीड, यू नो योर पॉकेट, डू द बेस्ट। नहीं मांगोगे और स्वेच्छा से लोग देंगे तो उसमें उनको आनंद होगा। मांग लोगे कितना चाहिए तो भूल जाएंगे, दे दिया खत्म हो गया, दे भी देंगे खत्म हो गया। देखिए ये उदाहरण है ना मांगने के लिए, कहते मांगा ही क्यों? पदत्रयम् ब्रणेते, तूने क्यों मांग लिया मुझसे तीन पद जमीन? गुहक में यह अबुद्ध अभियुद्धमान मूर्ख कहीं का। अरे नहीं मांगा होता तो भी मैं तुमको दीपम दाससम, मैं तुमको एक दीप दे दिया होता, नहीं मांगने पर भी ये फायदा होता है। विष्णु जानता है एक बात को, मांगता नहीं है, कल कलश का फरम देता है, बस वो लोग देते हैं। मांगोगे तो हजार नखरा करेंगे लोग। फिर कहते हैं बलि महाराज नौ अपमान माम उपवर्ज, आगे हे बालक सुन लो, मेरे पास जो एक बार आ जाता है मांगने के लिए तो मैं उसे इतना देता हूं, इतना देता हूं कि उसे फिर मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तस्मात मुहि बटो कामो प्रतीक्षमे, अभी भी सोच लो, सेकेंड चांस तुम्हें दे रहा हूं, अभी भी सोच लो। अरे कम से कम बेटा इतना तू मांग ले कि तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो सके। न अपमान माम उप्रज्य भूयो याचू तुम अर्हसि, जो एक बार मेरे पास आकर के मांग लेता है, जीवन में उसे कभी मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसलिए तो बालक है, समझ नहीं पाया, गलती हो गई। तस्मात देरफोर कति तस्मात वृतिकरिम भूमिम बटो कामम प्रतीक्षा में। हे बालक, हे बटू, कम से कम उतना मांग लो जितना से तुम्हारा जीवन यापन हो सके। सेकेंड चांस दे रहे हैं। अब इतना कहने के बाद बलि महाराज चुप हो गए और आगे भगवान वामन देव क्या कहे हैं वह बात बड़ा है, सार गर्भित है, वो आप लोग कल से या बाद में सुनिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कमेंट, क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग?
हरे कृष्णा प्रभु। मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु कि भगवान नरसिंह ने जब अवतार लिए थे तब उनका वो फॉर्म लेने का, वो अवतार लेने का एक रीजन था, वो नरसिंह अवतार लिए थे। लेकिन भगवान वामन देव उस रूप में क्यों आए? क्योंकि मेरे ख्याल से, मतलब मैं जहां तक समझ पाया हूँ, बलि महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे, तो अगर वैसे ही मांग लेते कि मुझे तीनों लोग चाहिए तो शायद देवी देते नहीं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्यों उस रूप में आए वामन देव के।
पहला नंबर, माता अदिति की एक इच्छा थी, वह तीन प्रकार की इच्छा थी। एक इच्छा थी कि मेरे पुत्रों का खोया हुआ धन राज्य प्राप्त हो जाए। दूसरा इच्छा था कि शत्रु लोग मारे जाएं। और तीसरा इच्छा था कि उनकी पत्नियां विधवा होकर के बिलखे, रोए। भगवान उनके इच्छा को पूरा करना चाहते थे। सोचे कि भगवान ने कहा कि आज बलि राजा है, मैं राजा के रूप में आऊंगा, तो आज वो इतना प्रतापी है, इतना बलवान है, उसे आज के दिन कोई राजा प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर ब्राह्मण का कृपा है। ब्राह्मण इसी अध्याय में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण का कृपा होने के चलते उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन लोहा लोहा को काटता है, इसलिए भगवान ब्राह्मण के रूप में आए। और भगवान को तो काम करना था, खून खराबी करना अच्छा काम नहीं है। तो भगवान जब मांगे, बलि महाराज वचन दे चुके थे, शुक्राचार्य ने सांप दे दिया, काम हो गया, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शुक्राचार्य ने सांप दिया ना कि तुम नरक में जाओगे, ये करोगे, वो करोगे। तो लेकिन महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली जी थी, वही महान भक्त थी बलि के समान। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि बलि महाराज इतने महान भक्त हैं, भगवान मांग लिए होते तो दे भी सकते थे, भगवान वैसा काम नहीं करते। भगवान को माता अदिति को ही प्रसन्न करना था और बलि का गुणगान करना था, दिखाना था इंद्र को और अदिति को कि देखो बलि कितना महान है, भक्त कितने महान होते हैं। अरे बलि को तो उसका खोया हुआ राज मिला, उसको नया चीज क्या मिला, और बलि को मेरा कृपा मिल गया, उसके लिए मैं स्पेशल राज्य का स्थापना किया, सुतल रोग का, जो कि स्वर्ग के राह से कहीं बहुत समृद्ध राज्य है। स्वर्ग में बलि को हमेशा भय बना रहता है कि मेरा पद जाएगा, लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे यहां तुम्हारा द्वेषी कोई नहीं होगा, सब मित्र होंगे, तुम्हारा कंपटीटर कोई नहीं होगा।
और उतना ही नहीं, भगवान वॉचमैन बन गए कि तुम हमेशा मेरा दर्शन करते रहोगे। तो भगवान बलि के भक्ति को बढ़ाना चाहते थे। यदि मांग लिए होते ना, दे देते, तो फिर बलि महाराज की कथा यहां पर नहीं आता। भक्त ऐसे ही भगवान देते हैं, इसमें बड़ा बात क्या है, इसमें बड़ा बात क्या है, दे दिए तो कोई बड़ा बात नहीं होता ना। लेकिन सर्वस्व दे दिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक श्लोक है, उस श्लोक के तात्पर्य में मनस्विनाने कृतम सुदुष्कृतम, मनस्वियों के लिए कुछ भी दुष्कृति नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, यानी वे सब कुछ कर सकते हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतलाए हैं कि संसार में कोई आदमी अपना धन बिजनेस में लगाए, जुआ खेल करके, वेश्यावृत्ति कर करके, शराब पी करके अपना धन बर्बाद करता है तो लोग गाली देते हैं, अरे शराबी आदमी था, मर गया, अच्छा हुआ, वो बिजनेस नहीं जानता था, लोग थूकते हैं, गाली देते हैं। लेकिन कोई भगवान को देख करके कंगाल बन जाता है तो लोग उसका पूजा करते हैं, कहते वाह कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा दिल वाला है, भगवान को सब कुछ दे दिया, समझ रहे ना। तो बलि महाराज का महत्ता बढ़ाने के लिए भगवान ने काम किया, और भगवान बड़े खुश होते हैं भक्तों का नाम बढ़ाने में। अपना नाम भले मत पढ़े लेकिन भक्तों का नाम बढ़े, भगवान को स्वाभाविक है, सब बाप खुश होते हैं बेटे का नाम बड़ा होता है तो।
जी।
और कोई प्रश्न?
सपोज कि हमारी पहचान है कि ऐसे लोगों से जिनके पास बहुत लक्ष्मी है लेकिन डर रहता है कि उनके साथ रहेंगे मिक्स हो जाएंगे,
उनके साथ रहेंगे तो
मिक्स हो जाएंगे, उनकी टेंडेंसीज, उनकी गलत आदतें हमारे अंदर भी आ जाती हैं, देखते तो दूर रहते हैं।
इसीलिए जब प्रचार करने जाओ तो उनका संग मत लो, अपना संग उनको दो। उनका संग लोगे तो कर्मी बन ही जाओगे आज नहीं तो कल, अपना संग दोगे तो उनको भगत बना दोगे। इसका मतलब कि जाओ तो गीता भागवत से प्रचार करो, कृष्ण के विषय में बात करो, एक माला जप करो बैठ करके वहां पर, ठीक है, अपना संग दो। आश्रम में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, कैसे प्रचार चल रहा है, ये बात बताओ, अपना संग दो, उनका संग मत लो, उनका संग लिया तो गया काम से।
यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने दान का बोला, वृद्धाश्रम में दान करें या चाइल्ड को स्पॉन्सर करें, वो दान
तमोगुणी दान,
तमोगुणी दान
कने एक व्यक्ति विशेष के लिए किया गया दान तमोगुणी दान, समाज के लिए किया गया क्या दान रजोगुणी दान, और देवी देवताओं के लिए किया गया जो दान है वो सतगुणी दान होता है।
हरे कृष्णा।
यस मुरारी जी,
पहले आप बोल रहे थे कि दुख है दुख है दुख, तो हम कुंभ मेला में गए थे और हमें किसी ने बोला था चलिए साधु बहुत वयस्क है उनका दर्शन करके आएंगे, हम गए थे तो वो देवरा बाबा का पंडाल था और सब लोग उधर आते थे और महाराज जी का पैर छूते थे और बोलते थे महाराज जी मुझे ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। महाराज जी ने कम से कम 15-20 मिनट सुन लिया, सब आदमी ऐसे बोलते थे, और वो जो नजदीक आते थे वो नेता लोग थे और वो महाराज जी को पैर को छुएंगे और अपनी तकलीफ बताएंगे। तो महाराज जी ने बोला क्या तुम जीवन पूरा दिन भर यही करते हो, ये तकलीफ है वो तकलीफ है, तो तुम्हारे जीवन से राम हट जाएगा और तकलीफ आ जाएगी, इसलिए तुम राम राम करो, तकलीफ हट जाएगी और राम तुम्हारे जीवन में आ जाएगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अमित भाई कह रहे राम राम करो, तुम राम के नाम में, राम तुम्हारे काम में, और तुम अपने काम में तो राम अपने धाम में। हम क्या पढ़ा है? ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।